हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसकी फिक्र करते हुए अनय सामने खड़े डॉक्टर से ये सब कुछ पूछ रहा था, लेकिन तब तक डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन के असर से उसकी आंखें भारी हो रही थीं और उसे नींद आ रही थी, लेकिन अनय के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ये सुनकर उसे अच्छा लगा कि अनय को उसकी इतनी फिक्र है। डॉक्टर ने अनय को समझाया कि वो ठीक है, शायद ज़्यादा बोलने बात करने की वजह से ही उसे पैनिक अटैक आया था और ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ब्लड लॉस अब रिकवर हो गया है क्योंकि कल से ही उसे खून चढ़ाया जा रहा था। ये सारी बातें जानकर अनय को काफ़ी तसल्ली हुई और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर आकर ही उसने आदित्य से कॉल पर बात की, लेकिन वो उसे कॉल पर ज़्यादा बात नहीं कर पाया, इसलिए आदित्य अभी वहाँ पर उससे मिलने आ रहा था। अनय अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था और अब उसने अंकित पर भी उतना ध्यान नहीं दिया। अनय मनस्वी को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर आया था और इतनी देर उसने आदित्य से कॉल पर बात भी की थी। आदित्य का खुद ही फ़ोन कॉल आया था, वो उसके बारे में पूछ रहा था और मनस्वी के बारे में भी। अनय ने उसे बता दिया। उसकी ऐसी टेंशन भरी आवाज़ सुनकर आदित्य ने कॉल पर कहा कि वो आ रहा है उससे मिलने, और अभी जब वो दोबारा मनस्वी के बेहोश होने के बाद कमरे से बाहर निकल कर आया था, तब तक आदित्य पहले से ही वहाँ पर खड़ा था। उसने अनय को सामने जैसे ही देखा तो अनय उसके गले से लग गया और बोला, आदित्य, और इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे साइड में पड़े एक बेंच पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठकर बातें करने लगा। अंकित अभी भी वहाँ पर दूसरी साइड में एकदम अपने बॉडीगार्ड वाले रोल में खड़ा था, क्योंकि मनस्वी उसे पहले ही डांट लगा चुकी थी तो वो अब प्रोफेशनल लगने की कोशिश कर रहा था। मनस्वी से बात करके आने के बाद उसने बाहर आकर कोई भी बात नहीं की और चुपचाप ही वहाँ पर खड़ा हुआ दोनों को देख रहा था। आदित्य ने एक नज़र उसकी तरफ देखी और फिर अनय से पूछा, क्या हुआ अनय, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, सब ठीक है ना, उसे होश आ गया था ना, तूने मुझे बताया था कॉल पर। अनय उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, फिर से बेहोश हो गई यार वो, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बताओ, उसने ऐसा कदम उठाया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अनय ने इस तरह से रोते हुए अपने आंसुओं के बीच ये बात बोली तो आदित्य ने कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम इतना क्यों सोच रहे हो अनय, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, उसे तो तुम या मैं कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन अभी तुम आगे सोचो क्या करना है, और जैसी तुम्हारी हालत है, तुम अब उसे पसंद करते हो ना, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा, तुम दोनों का रिश्ता। इतना बोलते हुए आदित्य ने अनय की तरफ देखा और वो चुप हो गया, क्योंकि उन दोनों के रिलेशन पर वो ऐसे ही कोई कमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे बोलना ठीक नहीं समझा। जबकि अनय ने कहा, नहीं, वो बस मैं गिल्ट में ही ये सब बोल रहा हूँ, और उसे कुछ हो जाता तो, नहीं, कभी नहीं, कभी माफ़ नहीं कर पाता मैं खुद को। वो दोबारा से वही बात बोलने लगा तो आदित्य ने फिर से उसे समझाया, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, उसने खुद ही किया, अगर वो पागल सन की लड़की है तो उसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम ऐसी लड़की को पसंद कैसे कर सकते हो अनय, उसके जैसी सन की ज़िद्दी लड़की के साथ लाइफ स्पेंड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, आदित्य को चुप कराते हुए अनय बोला, क्या बोल रहे हो, और वैसे भी इतना भी मुश्किल नहीं है ये सब कुछ, क्योंकि मैं इतने दिनों से उसके साथ ही तो हूँ, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे जानबूझकर मुझे तकलीफ़ पहुँचे। हाँ, माना कि पहले वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, लेकिन वो सब तो अब बदल गया है, और अब वो उसकी लाइफ में मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। नहीं तो तुम्हें लगता है कि कोई लड़की ऐसे ही बिना किसी बात के अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। मनस्वी ने उसके लिए जो कुछ भी किया उससे अनय पूरी तरह से कन्विंस हो गया था कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन आदित्य मनस्वी को हमेशा से ही इतना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उसके बारे में सोचते हुए ये सब कुछ बोला, और अभी उसने जो हरकत की उसके बाद से तो आदित्य को वो अलग ही पागल साइको लड़की लग रही थी, जो कि शायद कुछ वक्त के लिए ही अनय के पीछे पड़ी हुई है। हाँ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन अचानक से रिश्ता और उनके बीच इतना सब कुछ बदलना बहुत ही अजीब सा है, कम से कम आदित्य के लिए तो। इसलिए उसने अनय की तरफ घूर कर देखा और फिर कुछ सोचता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो ये सही हो सकता है, तेरे साथ हो अलग हो, लेकिन जितना मैं उसे जानता हूँ, कैसे कैसे बयान देती है हमारी कंपनी के बारे में, हमेशा ही उल्टा सीधा बोलती है, और बाकी किसी भी राइवल को नहीं छोड़ती, और लेती है उसे बर्बाद करके साथ एडजस्ट कर पाएगा क्या? मुझे ये सब इतना नहीं पता, लेकिन आदित्य, जितना मैं जानता हूँ बिजनेस में और कंपनी में तो सब लोग ही साम दाम दंड भेद सारे रास्ते अपनाते हैं अपने फायदे के लिए। आईएमसी और तू भी ऐसा ही करता होगा, वो कोई अलग नहीं है। हाँ, शायद थोड़ी सी ज्यादा जिद्दी है और थोड़ा अलग तरह से सोचती है, लेकिन सोचो लड़कियों के लिए लाइफ इतनी आसान नहीं होती, और वो भी इस मुकाम पर पहुंची है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाद वो टॉप पोजीशन में सेकंड नंबर पर है, तो ये सब कुछ पाना हासिल करना भी तो आसान नहीं होता है। इसके लिए कभी कभी इंसान को वैसा बनना पड़ता है जो वो असल में नहीं होता। अनय पूरी तरह से मनस्वी की साइड लेते हुए उसकी तरफ से बोला, तो आदित्य ने उसके कंधे पर अपना हाथ खपथपाया और बोला, ऑल द बेस्ट यार, अगर तू यही चाहता है तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। अगर मेरा दोस्त अपनी लाइफ में खुश रहे और उसे उसका प्यार मिल जाए। आदित्य को अपने साथ देखकर अनय को काफी खुशी हुई और उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, और अब शायद उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसे मनस्वी का साथ देना है और उसके साथ पूरी लाइफ बितानी है। इसके अलावा उसका ख्याल रखना है और उसे बदलना है, जिस तरह से उसने इस तरह की हरकत की और अपनी जान लेने की कोशिश की, ताकि आगे फ्यूचर में कभी वो ऐसा कुछ ना कर पाए। लेकिन तभी आदित्य और अनय आपस में बात ही कर रहे थे, तभी आदित्य की नज़र अंकित पर पड़ी और उसने अनय को इशारे से उस तरफ दिखाते हुए पूछा, इसके बारे में क्या सोचा है? ये भी मुझे बहुत अजीब ही लग रहा है। मुझे लगता है ये मनस्वी को पसंद करता है और उसे बहुत कुछ ज़्यादा ही मानता है। आदित्य की बात सुनकर अनय ने भी मुड़कर उसकी तरफ देखा, और वो सच में कल से कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहा था जिससे कि किसी को भी शक हो जाए। उस पर अनय ने कहा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन मनस्वी उसे पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझे पसंद करती है। और जिस तरह वो ऑब्सेस्ड है मेरे लिए, मतलब इस तरह के लोगों का कम से कम बाकी कोई भरोसा हो या ना हो, लेकिन आंख बंद करके हम लॉयल्टी भरोसा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो इसे बॉडीगार्ड से ज़्यादा कुछ नहीं मानती, ये मुझे पता है। इस पर आदित्य ने कहा, संभाल कर रहना, ऐसे बीच बीच में मत आने देना, हो सके तो इसे उसके पर्सनल बॉडीगार्ड की पोस्ट से भी हटा देना। ज़्यादा साथ रहने से भी इस तरह का बॉर्डर दूर रहेगा तो अच्छा होगा। अगर ये उससे दूर रहेगा तो हो सकता है धीरे धीरे इसे भी सब कुछ समझ आ जाए, जो कि तुम सबके लिए अच्छा होगा, आदित्य ने उसे एडवाइस देते हुए कहा। फिलहाल तो अनय के बस में नहीं है उसे उसकी पोस्ट से हटाना, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में सोचकर अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा,
हाँ, मनस्वी की हालत ठीक हो जाए और हम घर जाएंगे, तब मैं उसका ठीक होना जरूरी है। नैना, डोंट वरी, ठीक हो जाएगी वो, सिर्फ हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। और आदित्य काफी देर तक वहां पर उसके साथ ही रुका रहा, उसे तसल्ली देने के लिए, और आदित्य के साथ होने की वजह से अनय को भी पहले से काफी बेहतर फील हो रहा था। दूसरी तरफ शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर काफी दूर दूर पर लगभग 20 से 30 बंगले बने हुए थे, और वो सब एक से बढ़कर एक बड़े बड़े और शानदार थे। लेकिन उस एरिया की उन सारे बंगलों की आपस की दूरी भी 4-5 किलोमीटर होगी, क्योंकि वो सब खुद ही आधे किलोमीटर के दायरे में बने हुए थे, और बीच में बंगलों के बाद आसपास का एरिया जैसे फार्मिंग के लिए यूज होता था, या फिर वहां पर काफी खूबसूरत गार्डन थे। आसपास का एरिया दूर से देखने पर जंगल की जैसा ही लगता था। वहां पर अक्षत के ड्राइवर ने कार रोक दी। कार रुकते ही नैना ने पीछे मुड़कर अक्षत की तरफ देखा, तो अक्षत ने उसका हाथ अपने हाथ में फंसाते हुए कसकर पकड़ लिया, और विवान तब तक कार के गेट से बाहर निकल चुका था। अक्षत और नैना भी एक साथ ही कार से बाहर निकले। उन दोनों ने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ था, या फिर ये कह लो कि नैना ने बहुत ही कसकर अक्षत का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो काफी घबराई हुई सी थी, और ऐसे में वो अकेले तो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। उसे किसी भी कीमत पर अक्षत चाहिए था। अक्षत भी उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसने भी अपना हाथ वापस नहीं लिया और नैना के साथ ही बड़े गेट से अंदर आया। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, जिसने अक्षत और विवान को देखकर पहचान लिया, और उन्हें सलाम करते हुए उसने घर का गेट खोल दिया। फिर अक्षत, विवान और नैना चलते हुए वहां के अंदर आए। वो मेन गेट से लेकर के बंगले तक वाले दरवाजे तक का रास्ता भी काफी लंबा था। ऐसे चलते हुए नैना के मन में बड़े ही अजीब से ख्याल आ रहे थे, और उसने सोचा कि वो चुप रहेगी, लेकिन फिर उसे रहा नहीं गया तो उसने अक्षत की तरफ देखते हुए पूछ ही लिया, अक्षत, ये बताओ, इस वक्त तुम्हारे मम्मी पापा दोनों घर पर मिल जाएंगे? वो दोनों कहीं जाते नहीं? वैसे भी शाम का वक्त था, उन लोगों को यहां पर आते हुए काफी टाइम लग गया, क्योंकि वो लोग सुबह नहीं निकल पाए थे मीडिया की वजह से। अक्षत ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, मम्मी पापा दोनों ही होंगे, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें किसी से अकेले अलग अलग मिलना है क्या?